ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पीड़ितों के लिए प्रभावी न्याय सुनिश्चित करते नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक अतुल कुमार माथुर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1 जुलाई 2024 से भारत में आईपीसी सीआरपीसी हट गया है और नए शुद्ध रूप से जो भारतीय कानून है वो लागू हो गए हैं। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इसके साथ ही जो अंग्रेजों के बनाए सारे नियम कायदे कानून और आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं थीं वो हट गई हैं। अब हम शुद्ध रूप से भारतीय आपराधिक कानूनों के तहत आ गए हैं, और जैसा सरकार ने बताया है और जैसा कि इसे पढ़ने से पता चलता है कि इसमें न्याय की बात ज्यादा कही गई है और साथ ही सारी चीजें इतनी पारदर्शी हैं और डिजिटल माध्यमों का भी इस्तेमाल होगा कि एक आम कंप्लेनेंट जो है उसे काफी सुविधा मिलेगी। और एक लंबी लड़ाई जो लड़नी होती थी, चाहे वो कोर्ट में आप लड़े या वकीलों के माध्यम से लड़े या पुलिस में, उसमें समय की काफी बचत होगी सबके लिए और सबको न्याय मिलेगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी अतुल माथुर साहब उपलब्ध हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
नमस्कार सर, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि ये जो नए आपराधिक कानून आए हैं ये क्या हैं, क्या दोनों में फर्क है और इनकी व्याख्या कर एक आम आदमी इसे कैसे समझे।
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने 1 जुलाई 2024 को एक इतिहास बनते हुए देखा है। गुलामी के समय में 1860 में इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता बनी, फिर उसी कालखंड में सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दंड प्रक्रिया संहिता बनी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बने। वो अंग्रेजों की पार्लियामेंट के पारित एक्ट थे, अधिनियम थे, और हमारी शायद कोई मजबूरी रही कि हम उनका पालन गुलामी में तो करते रहे पर आजादी के इतने दिनों तक भी हम करते रहे। मैं ये नहीं कहता कि वो कानून बिल्कुल गलत थे, बहुत अच्छे नियम थे, कानून थे, और काफी दिनों तक उन्होंने हमारे देश में कानून का पालन करवाया, कानून को पारित रखा, और काफी कुछ उसमें से हमने बोरो भी किया है, नए कानूनों में हमने उससे लिया भी है, ओवरऑल नहीं कर पाए हैं। और वो ये थी कि वो अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते थे, कानून रखते थे, उसमें भारतीयता नहीं थी, भारतीय समाज की जो अपेक्षाएं थी उसका उल्लेख नहीं था, उसके बारे में कोई अकोमोडेशन नहीं था। और जो टाइम टू टाइम देखिए 150 साल के अंदर कितनी प्रगति हुई है, तकनीक प्रगति हुई है, प्रौद्योगिकी की प्रगति हुई है, समाज बदला है, समाज की सोच बदली है, ऐसे अपराध करने के तरीके बदले हैं, उनको समाहित करने के लिए इन कानूनों में गुंजाइश नहीं थी और कार्य करने में बहुत दिक्कत आती थी। इसलिए मैं इन कानूनों का स्वागत करता हूं। ये भारतीय कानून है जैसा आपने शुरू में फरमाया, और इनके अंदर एक भारतीयता की सुगंध आती है और हम गौरवान्वित हैं कि हमारी सरकार ने हमको अपनी संसद का बनाया हुआ कानून दिया है जिसका हमें सबको पालन करना चाहिए। और जो हमारा ध्यान बिंदु है वो चेंज हुआ है, पहले जो कानून थे उसमें अपराधी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था, उसमें पीड़ित का ध्यान कम था। अब इन्होंने जब कानून नए बनाए भारत सरकार ने तो न्याय की परिकल्पना की है। देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दंड प्रक्रिया संहिता में प्रक्रिया शब्द था, प्रोसीजर लॉ है इसलिए प्रक्रिया शब्द ठीक था, लेकिन इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य इसके नाम में आ गया, उसका उद्देश्य है नागरिक सुरक्षा। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा एक बहुत ही समुचित नाम है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए।
आपने तकनीक की बात की कि इसमें नई तकनीक से हम न्याय देने की कोशिश करेंगे, अगर तकनीक के पहलू पर बात करें तो क्या हाइलाइट्स हैं ये बीएनएसएस के और बीएनएस के।
देखिए सबसे बड़ी तकनीक की बात यह है कि पहले हम जब तकनीकों का प्रयोग करते थे, कानून में प्रावधान नहीं था, तो अदालतों में ऐसी साक्ष्य का रेलेवेंस और एडमिशन, उनको कैसे मान्यता मिले, उनको कैसे उसको समर्जित किया जाए, उसमें बड़ी दिक्कत आती थी और उनकी सत्यापन की बड़ी समस्या आती थी, टेप रिकॉर्डिंग होती थी, वीडियोग्राफी होती थी, उसके ऊपर बहुत संकट आता था, उसमें बहुत दुविधा होती थी। ये एक गिवन फैक्ट है कि हमारा हर नागरिक अब तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, अपराधी भी कर रहे हैं, तकनीकी ने हमारे हर क्षेत्र के अंदर हमें सहयोग दिया है तो कानून के पालन में और न्यायपालिका के कार्य में क्यों नहीं। इसलिए तकनीक का उपयोग करना उचित भी है, समकालीन भी है, और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हम एक प्रोग्रेसिव प्रगतिशील समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो तकनीकी के प्रयोग से ट्रांसपेरेंसी जिसमें आएगी और दूसरा इसमें गति आएगी, इसमें समय की बचत होगी और ये एक हमारी न्याय प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाती
है। बिल्कुल, कंप्यूटराइजेशन का पूरा इस्तेमाल है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर एफआईआर करने से लेकर जब तक इसकी प्रोसीडिंग्स होगी और जब तक सुनवाई होती रहेगी, सब कुछ डिजिटली उपलब्ध होगा और जो भी दोषी है या जो विक्टिम है उन दोनों को 90 दिनों के अंदर में सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं। साथ ही फॉरेंसिक्स के मामले में भी ये मैंडेटरी है कि उनको उपलब्ध कराया जाए जो भी उनका डेटा है डिजिटली, ताकि कोई भी सूचना से वो वंचित न रह सकें। कई जगह वीडियोग्राफी भी मैंडेटरी की गई है और ई स्टेटमेंट्स भी उनको मिलेंगे। इस तरीके से जो आपने कहा पहले कि एक जो विक्टिम है उसका भी ध्यान रखा गया है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कंप्लेनेंट है उसका ध्यान रखा गया है, और ये एक बड़ा बदलाव है भारतीय आपराधिक कानून में। आपकी राय?
सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में पीड़ित को मद्देनजर रख के कानून की संरचना नहीं हुई थी। विक्टिम एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है कानूनी प्रक्रिया में, किसी भी मामले का जो पीड़ित है, जिस आपराधिक कार्य के लिए हम इन्वेस्टिगेशन या सब कर रहे हैं उसमें एक पक्ष तो विक्टिम होता ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ यह परिकल्पना थी कि हमारे जो मुकदमे हैं वो सरकार बनाम अपराधी होंगे, स्टेट वर्सेज एक्यूज। इससे क्या होता था, जैसे जो दीवानी मामले होते हैं, सिविल मामले होते हैं, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष जिसने मुकदमा दायर किया और एक पक्ष जो उस मुकदमे को डिफेंड कर रहा है, तो दोनों पक्षों का अदालत के सामने आना आवश्यक था। आपराधिक कानूनों में जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिम्मेदारी ले लेती है विक्टिम की तरफ से अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, वो समाज के खिलाफ एक अपराध माना जाता है। हर अपराध किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ तो होता ही है, लेकिन उसको समाज के खिलाफ मान करके एक जनरल कंसेप्ट लेके स्टेट वर्सेज एक्यूज जब केस होता है, होना तो ये चाहिए था कि स्टेट अपना पक्ष जब रख रही है तो पीड़ित के साथ सहयोग लेकर के पीड़ित की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपना पक्ष रखे, ये तो आवश्यक था ही इस भावना में। लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्य प्रणाली में समाजित नहीं हुआ और पीड़ित पीछे छूटता चला गया। उससे क्या होता है कि हमारी जो कार्यशैली है, हमारे जो कार्य प्रणाली है, उसमें पीड़ित को कोई उचित स्थान नहीं था। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, किसी जगह कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी राहगीर ने ये देख लिया कि साहब कोई व्यक्ति गिर गया है, उसको चोट लग गई है, वो नजदीक के पुलिस स्टेशन पे जाकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे हम एफआईआर कहते हैं, वो दर्ज करा देता है उस दुर्घटना का विवरण देकर के। वो हमारे यहाँ सूचना देने वाला व्यक्ति बन गया, उसको अंग्रेजी में हम इन्फॉर्मेंट कहते हैं। तो हमारे जो धारा 154 थी सीआरपीसी की, उसमें ये प्रावधान था कि जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा उसको एक एफआईआर की कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेंट खुद भी विक्टिम हो। अब सपोज करिए जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो थाने में आता है और वो कहता है कि साहब मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे उसकी कॉपी दे दीजिए। उसके लिए 154 में मुफ्त कॉपी देने का कोई प्रावधान ही नहीं था, तो कानून में ये रुकावट थी। अब 173 धारा बनी है, तब उसमें यह आया है कि साहब जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो इन्फॉर्मेंट नहीं है, वो सूचना देने वाला नहीं है, तो उसको भी आप मुफ्त में कॉपी देंगे। तो ये पीड़ित के लिए एक सुविधा बनाई गई। दूसरा इसमें यह हुआ कि कहीं भी आप दुर्घटना होती है या अपराध होता है, तो कानून के अंदर ये धारणा थी कि जो क्षेत्राधिकार वाला पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस का केंद्र है, वहां जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए, अपनी एफआईआर दर्ज कराइए। अब जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसके ज्ञान में कितनी बातें आएंगी, उसको कितना भौगोलिक ज्ञान प्राप्त है, कितना वो क्षेत्र के बारे में जानता है कि वो नजदीक के पुलिस स्टेशन, उस क्षेत्र में जिसका क्षेत्र अधिकार है उस पुलिस स्टेशन पे जाए। हो सकता है जब तक दुर्घटना का परिणाम आ रहा है, वो पीड़ित हो रहा है, तब तक उसका क्षेत्र भी बदल जाए। तो उस समय क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में चला जाता था जिसका वो क्षेत्र अधिकार नहीं था, तो पुलिस अधिकारी उसकी एफआईआर लेने से हिचकते थे या नहीं लेते थे। अनेक प्रकार के न्यायालयों में ये कहा कि क्षेत्र अधिकार के बाहर नहीं है, उसकी तरफ से कोई रोक नहीं है, आप एफआईआर ले सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, तो वो एफआईआर के लिए जिस क्षेत्र में वो होता था उसके अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पे सूचना देने वाले को जाना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान तब होता था, इस दुविधा को अपराधी अपने काम में लेते थे कि वो एक क्षेत्र में अपराध करके दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे, या अपने अपराध को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ़ा करके रख देते थे, जिससे कि कौन से क्षेत्र में अपराध हुआ है उसका पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाए, और वो जब तक पुलिस उस पर एक्शन करेगी तब तक वो अपना बचाव करते रहेंगे। अब ये समस्या दूर हो गई है, अब जैसे हम जीरो FIR कहते हैं, शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट, उसका एक प्रावधान रख दिया गया है और मैं उसकी लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। धारा की 173(1) में लिखा गया है, संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, ये है इरेस्पेक्टिव ऑफ दी एरिया, जिस एरिया में वो अपराध हुआ है, जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक ई सूचना द्वारा पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना है, इसका भी प्रावधान पहले नहीं था, आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर के पुलिस स्टेशन में अपनी सूचना देनी पड़ती थी, अब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप 3 दिन के अंदर अंदर जाकर के उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें और उसको ऑथेंटिकेट कर दें। तो ये एक परिवर्तन व्यक्ति के लिए आया है।
ये जीरो FIR है, ये पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि किस तरीके से इफेक्टिवली एक पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जा सकेगा और उसे थाने थाने भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर से उधर, जो कि अब तक होता रहा था। लेकिन अतुल साहब, साथ में एक चीज और हो रही है कि इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है, यानी पुलिस जो है, क्या उसको ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं और कुछ मामलों में पुलिस उसका बेजा इस्तेमाल कर सकती है?
देखिए, जहां तक बेजा इस्तेमाल की बात है तो कोई भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है। पहले भी शिकायतें आई हैं कि पुलिस ने बेजा इस्तेमाल किया है, इसलिए अगर हम इसके आधार पे ही अपने कानूनों में सुधार नहीं लाएं और उसमें शक्तियां प्रदान नहीं करेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। हमें हमारी पुलिस में, जो हमारे समाज के लोग होते हैं, कंपटीशन देकर आते हैं, सिलेक्शन देके आते हैं, आजकल आधुनिक ट्रेनिंग होती है उसमें प्रशिक्षण में उनको पूरी तरह से प्रो पब्लिक का एटीट्यूड रखने की शवायद की जाती है, उसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, सहयोग देना चाहिए और किसी भी प्रणाली में संदेह नहीं करना चाहिए। देखिए, जब संदेह नहीं होता है, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। मैंने लगभग 40 साल भारत सरकार की नौकरी की है, मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया ऐसा कि मेरे पे किसी ने संदेह किया। उसका कारण ये रहा कि मैंने अपनी कार्यशैली को अपनाया, उसमें सहयोग लिया पब्लिक का, जन सहयोग से मैं आगे बढ़ा और मेरी गुडविल पब्लिक ट्रस्ट मेरे को हमेशा साथ देती रही और मेरा मार्ग प्रशस्त करती रही। जब हम पब्लिक को एंटागोनाइज कर लेते हैं अपनी कार्यशैली से, तो मैं हमारे पुलिस भाइयों से भी कहना चाहूंगा, आपकी कार्यशैली न्याय संगत हो, न्यायपूर्ण हो, आपकी भावना ऐसी परिलक्षित होती हो कि आप न्याय के प्रति काम कर रहे हैं, आप किसी दुर्भावना से काम नहीं कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से जन सहयोग मिलेगा। और जब जन सहयोग मिलेगा और पीड़ित की तरफ आपका पूरा ध्यान होगा, पीड़ित के को न्याय दिलाने में आपका प्रयास होगा, आप जरूर सफल होंगे।
अतुल माथुर साहब, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारा भारतीय समाज नए कानूनों को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपनाएगा, इनका पालन करेगा और प्रशासन को पूरा सहयोग देगा, जिससे हम एक भय मुक्त वातावरण पैदा करें, एक कानून का राज, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करें और अपराधियों के अंदर एक भावना पैदा करें कि अगर उन्होंने अपराध करने की चेष्टा भी की तो एक सक्षम कानून व्यवस्था उपलब्ध है और उनको दंड से कोई नहीं बचा पाएगा और उन्हें समुचित दंड मिलेगा, न्यायपूर्ण दंड मिलेगा और उससे एक समाज की जो छवि है वो सुधरेगी। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रगति करेंगे और एक विश्व गुरु की जो हमारी परिकल्पना है, एक एडवांस इकोनॉमी की जो परिकल्पना है, उसको हम सफलतापूर्वक उपलब्ध करें।
अभी आप सुन रहे थे पीड़ितों के लिए प्रभावी न्याय सुनिश्चित करते नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व पुलिस महानिदेशक अतुल कुमार माथुर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289904044।